के अमल की बदौलत दुनिया भर में जाना जाता है। कोविड-19 की वैक्सीनों के बारे में canada.ca/covid-vaccine पर मजीद मालूमात हासिल करें। हुकूमत कनाडा की तरफ से एक पैगाम।
इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है और मॉर्गेज के लिए आप कॉन्टेक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है और कॉल कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम और आदाब सब सुनने वालों को और देखने वालों को। हर बुध को 3 से 4 बजे आप प्रोग्राम सुनते हैं कारोबारी दुनिया के हवाले से, और हमारी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्गेज और रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन आपके कानों तक पहुँचाएँ ताकि आपको एक बड़ा फ़ैसला करने में आसानी हो। सामईन और नाज़रीन, जो भी इस वक्त फेसबुक पर और ई आवाज़ टीवी पर हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारी कोशिश ये होगी हम आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मॉर्गेजेस, और उसके अलावा हमारे साथ जैसे हमने पूरे रमज़ानुल मुबारक में आपसे कहा हुआ है कि हमारे साथ दो आलिम हजरात होंगे और रमज़ान के हवाले से कुछ सवाल भी हमारे पास आए हुए हैं टेक्स्ट पर, और उसके अलावा आपको ख़ुद भी अगर मौलाना से बात करनी होगी, कोई सवाल करना होगा शरई, तो आप कॉल कर सकेंगे 416-620-1778, हमारे स्टूडियो का नंबर है 416-620-1778। मुझसे राबते का नंबर 416-427-8655। मॉर्गेज के हवाले से हस्ब दस्तूर आज हम आपको मॉर्गेज के रेट्स आपके कानों तक पहुंचाएंगे, उसके अलावा क्या हो रहा है मार्केट में वो आपको बताएंगे, और क्या प्रोडक्ट्स आई हुई हैं न्यू, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपनी क्रेडिट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा 4 बजे तक, इंशाल्लाह आपको आज हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे, साथ साथ जाहिर बात है मौलाना हजरात भी होंगे। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आपको मॉर्गेज के रेट्स आपके साथ हम शेयर करते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है और मॉर्गेज के लिए आप कॉन्टेक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है और कॉल कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। जी सामिन, जैसा कि आपको पता है कि बैंक ऑफ कनाडा ने रेट को अपने प्राइम रेट को चेंज नहीं किया है, और ये उम्मीद की जा रही है कि 2023 तक, May 2023 तक प्राइम रेट चेंज नहीं होगा। अनटेनलेस बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में ग्रोथ हो जाती है या आने एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी हो जाती है तो फिर चांसेस हैं, उन्होंने कहा है कि 2022 में, यानी 2022 में, फिर भी उन्होंने 2022 का नाम लिया है, अभी इस साल का नाम नहीं लिया, 2022 के जून जुलाई में शायद 0.25% बढ़ा दें, लेकिन वो भी शायद का है। तो और ज़्यादातर चांसेस यही हैं, जैसे इस वक्त कोविड की सिचुएशन जा रही है दुनिया भर में, कि ये सन 2023 तक मॉर्गेज के जो प्राइम रेट है, वेरिएबल रेट जो हम आपको इस वक्त ऑफर कर रहे हैं 1.5%, यानी 1.49, ये वहीं पर बैठा रहेगा जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है। लेकिन भारत ये वेरिएबल रेट है, चेंज होते हुए देर नहीं लगती, लेकिन बैंक ऑफ कनाडा के जो कर्ता धरता हैं, जो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, गवर्नर हैं, उन्होंने ऐलान यही किया है कि ये 2023 और बहुत अगर अच्छे हालात हो गए तो 2022 तक शायद 0.25% बढ़ा दें। आपका रेट हो जाएगा 5 साल का प्राइम -1, प्राइम है इस वक्त 2.49, आपका हो जाएगा 1.49। 5 साल का फिक्स रेट है 1.99, 5 साल का फिक्स रेट है 1.99, ये उन लोगों के लिए जो 5-10% डाउन पेमेंट, यानी इंश्योर्ड मॉर्गेज। अनइंश्योर्ड मॉर्गेज जो हैं वो थोड़े से महंगे हैं, यानी अगर आप CMSC से इंश्योरेंस अपनी नहीं कराते तो आपका रेट हो जाएगा 2.09। मजीद मालूमात के लिए प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं 416 416-427-8655. इस वक्त कोविड की सिचुएशन जाहिर बात है दुनिया भर में बहुत ही खतरनाक है, और हम अपने प्रोग्राम में हमने ये दस्तूर बनाया हुआ है जब तक कोविड है तो हम एक दुआ की तरफ चलते हैं और दुआ सुनते हैं, और दुआ के बाद फौरन वापस आते हैं और आपको और आपको इन्फॉर्मेशन आपके कानों तक पहुंचाते हैं।
आका जाइए मौला जाइए, मुंतजर आज सारा जहां है, आप आ जाइए। जानशीने नबी, जानशीने नबी, आपका ही ये अर्ज़ो समा है, आप आ जाइए। काबा भी तेरा यूं वीरान है, उम्मत भी सारी परेशान है, काबा भी तेरा यूं वीरान है, उम्मत भी सारी परेशान है, आप ही आएंगे। आप ही आएंगे तो बसेगा ये सारा जहां है, आका जाइए। मौला ये तेरे जो हुबदार है, मुश्किल में सारे गिरफ्तार है, मौला ये तेरे जो हुबदार है, मुश्किल में सारे गिरफ्तार है, अस्करी के समर, अस्करी के समर सरनगू आज सारा जहां है, आका जाइए। माना के हम सब गुनाहगार हैं, माफी के मौला तलबगार हैं, माना के हम सब गुनाहगार हैं, माफी के मौला तलबगार हैं, हम तेरे मातमी, हम तेरे मातमी, हर आजादार लोहा गुना है, आका जाइए। महदी को भेजे रबे जली, आबाद काबा को देखें अकी, महदी को भेजे रबे जली, आबाद काबा को देखें अकी, तुर्बते फातिमा, तुर्बते फातिमा ने पुकारा, असहबो जमा है, आका जाइए। जानशीने नबी, जानशीने नबी, आपका ही ये अर्ज़ो समा है, आका जाइए, आ जाइए, आ जाइए।
इंसान अपनी जिंदगी में दो आम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है और मॉर्गेज के लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है और कॉल कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। जी सामिन, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपको ज़रूरी है ये बताना कि मॉर्गेज के जो रेट्स हैं इस वक्त, अगर हम पिछले 15 सालों में या 10 सालों का भी मवाजना करें, हिस्ट्री के लोएस्ट रेट हैं इस वक्त। और वजह इसकी जाहिर बात है कि सबसे बड़ी वजह जो घरों की प्राइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और बढ़ती ही चली जा रही हैं, जिसकी वजह से अगर रेट कम नहीं होगा तो इंस्टॉलमेंट इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस वक्त जो एक ज़माने में जब हम पिछले अगर देखें तो 2.5 से 3 लाख एवरेज लोन साइज़ होता था, फिर वो बढ़ के भैया 4.5-4 लाख हो गया। अब इस वक्त 6 से 6.5 लाख डॉलर एवरेज लोन साइज़ है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उसके ऊपर अगर हम पुराने वाले रेट्स पर जाएं, जब उस ज़माने में अगर आपने 2003 में या 4 में या किसी ने 8 या 9 में घर लिया होगा या 2010 में लिया होगा, तो वो सोचें देखें अपने रेट्स को जाके, उस वक्त 3.5-4.5 ये रेट चल रहे होते थे। तो क्योंकि लोन का साइज़ कम था तो वो रेट भैया खलता नहीं था इतना। लेकिन ये 6.5-7 लाख का जो एवरेज मॉर्गेज इस वक्त चला गया है लोन का साइज़, जिसकी वजह से अगर इतनी ज़्यादा इंस्टॉल रेट होगा तो इंस्टॉलमेंट बहुत ज़्यादा आ जाएगी लोगों के ऊपर। तो इस वक्त इस वजह से बैंक ऑफ कनाडा ने भी रेट को बढ़ाने का फैसला किया हुआ है। और यही नहीं, 0.25% शायद गिरा सकता है थोड़ा सा बेहतरी आने के लिए। बहरहाल इसीलिए बैंक रफ्सीज जो होती हैं और जो कंज्यूमर प्रपोजल होते हैं वो जब ही होते हैं जब आप अपने डेट्स को, अपने कर्जों को संभाला नहीं दे पाते। क्योंकि इनकम हमारे वहाँ एक होती है, खाने वाले माशाल्लाह ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर लोगों के, हमारे जो इंडियन पाकिस्तानी कल्चर है बहुत ज़्यादा अब ये देखने में आ रहा है, मियाँ बीवी मिल के काम करते हैं क्योंकि उसके बगैर घर चल नहीं सकता, जो हालात हैं। लेकिन जाहिर बात है हमारे बहुत से लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारी ख्वातीन घर पे रहें, लेकिन जाहिर बात है ये मिल के ही घर चलता है, दोनों पहिए जो हैं वो जब चलेंगे तो गाड़ी भी चलेगी सही। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हाउ टू गेट अ मॉर्गेज आफ्टर बैंकरप्सी। अगर आप ऊपर यहाँ देखें तो इसमें यहाँ पे मैंने इस पर लिखा हुआ है कि इस, अगर जो लोग फेसबुक और टीवी पे देख रहे हैं और रेडियो वालों के लिए मैं कहता चला जाता हूँ कि अगर आपकी कंज्यूमर प्रपोजल और बैंकरप्सी हो गई है तो इसका यह मकसद नहीं है कि आपको मॉर्गेज नहीं मिल सकता। आपको मिल सकता है, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी डाउन पेमेंट जो 5 या 10% पे लोग लेते हैं वो तो आप 2 साल तक भूल जाइए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेट इट आउट बट नॉट दैट लॉन्ग, यू मे not have to wait for your bankruptcy to disappear from your record to secure a mortgage. Most prime lenders, the ones with access to those with lowest rate, yani 5-10% yani jo bhi aapko 1.5%, 2% ka rate dega, will consider your mortgage application after 2 years of re-establishment, yani aapne consumer proposal aur bankruptcy kar di hai तो आपको 2 साल अपना क्रेडिट प्रपोजल को, क्रेडिट को बनाना है, तब आप जाके वो रेट पे जा सकेंगे। लेकिन अगर आपको उससे पहले मॉर्गेज चाहिए तो फिर आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री भी थोड़ी सी बिल्ड करनी है, यानी आपको सिक्योर कार्ड ले लेना है, आपको सिक्योर्ड जैसे क्रेडिट कार्ड आजकल ना $1,000 2,000 जमा कराएं तो आपको सिक्योर्ड कार्ड मिल जाता है, कार लोन आसानी से मिल जाती, मतलब मिल तो जाती है, रेट हाई होता है लेकिन एटलीस्ट आपको मिल जाती है ताकि आप क्रेडिट स्कोर अपना इम्प्रूव कर सकें। इसी तरह अगर आप इसमें देखें डाउन पेमेंट के लिए यह है कि आपको 20-25% आपको डाउन पेमेंट चाहिए होगी, क्योंकि उसमें आपको जब तक वो डाउन पेमेंट आपके पास नहीं होगी तो अगर आपकी बैंकरप्सी और क्रेडिट प्रपोजल अभी डिस्चार्ज हुआ है तो वो सिर्फ आपको सब प्राइम लेंडर ही आपको मॉर्गेज दे सकेंगे। अच्छा, उनके जो रेट्स हैं इस वक्त वो चल रहे हैं 2.59 से लेके 2.99 तक सब प्राइम लेंडर्स के, जो इतने बैड क्रेडिट के लिए जब हम ऐलान करते हैं ना बैड क्रेडिट, नो इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो उनके लिए है कि उनको भी मॉर्गेज मिल सकता है, क्योंकि ऐसे लेंडर्स भी हैं जो ऐसे लोगों के ऊपर एक्सपोजर दे सकते हैं, यानी पैसा लेंड कर सकते हैं आपको। अच्छा, अब क्या है साहब, जाहिर बात है जब आपका क्रेडिट लो है या आपके पास इनकम लो है तो आपको रेट वो नहीं मिलेगा जो इस वक्त बड़े बैंक्स ऑफर कर रहे हैं 1.5%, आपको रेट ज्यादा मिलेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो घरों की प्राइसेस तेजी से बढ़ रही हैं, तो मैं ये समझता हूं कि अभी भी अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि आपको कोई ए लेंडर नहीं मॉर्गेज दे रहा और अगर आपको बी लेंडर भी दे रहा है, तो भाई आप सिक्योर कर लें, क्योंकि वो भी इस वक्त रेट उनका जो है वो मैंने जैसे कहा 2.5% से लेके लेट से 3.25% तक भी आप चले जाते हैं, और आप उनकी एक लेंडर फीस होती है 1%, वो भी दे देते हैं, तब भी आपको ये वारे खाएगा, क्योंकि अप्रिसिएशन जो है वो 9 से 10 क्या बल्कि 12-14% जा रहा है आगे, जैसे अगर हम पिछले कई एक साल का अगर हम मुवाजना करें तो अप्रिसिएशन घरों का बेतहाशा हो रहा है, एटलीस्ट आप अपना घर सिक्योर कर सकेंगे। आगे चलते हैं, एक और प्रोडक्ट है उसको कहते हैं हाउ टू, वेल प्रोडक्ट तो नहीं है, आई मीन इट्स जस्ट एजुकेशनल मैटर, हाउ टू इम्प्रूव योर क्रेडिट। 5 वेज हैं टू इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर। एक है, आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री जरूर पता होनी चाहिए। ये अपने सुनने वालों को मैं बताता चलूं कि क्रेडिट हिस्ट्री साल में एक दफा जरूर चेक किया करें, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि मोहम्मद खान एक बड़ा कॉमन नाम है, सैयद रजा या वॉट एवर, बहुत कॉमन नाम होते हैं फर्स्ट और लास्ट टाइम हमारे, तो किसी की भी इंफॉर्मेशन आपके पास या आपकी कार्ड की मिसमैच हो सकती है, ये ग्लिच हो जाता है, तो वो एरर आपको ठीक कराना पड़ता है मॉर्गेज लेने से पहले। तो नो योर क्रेडिट हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने बिल्स को जाहिर बात है ऑन टाइम पे करें, कीप योर बैलेंसेज लो। तो लोग ये कहते हैं कि यार मेरा क्रेडिट इंप्रूव नहीं हो रहा, वो 650 पे अटका हुआ है, तो हम उनसे ये कहते हैं कि भैया कोशिश ये करें, अगर $10,000 का आपका क्रेडिट कार्ड है तो 35% आप रखें उसका बैलेंस, डोंट गो ओवर दैट, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर हो सके, उससे नीचे रहे तो बहुत अच्छा है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है, जाहिर बात है यू मेंटेन योर क्रेडिट हिस्ट्री, और इफ़ यू नीड हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट अस एज वेल, वी कैन गाइड यू हाउ टू इम्प्रूव योर क्रेडिट। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या कोई चीज़ नहीं है, वी कैन गाइड यू कि आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हैं। बहुत दफ़ा ये होता है कि लोग हमारे पास आते हैं, हम क्रेडिट हिस्ट्री खींचेंगे तो वो गिर जाएगा, तो यस यू राइट, क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा खींचने से गिरता है। अगर आपने पिछले 3 से 6 महीने में ज़्यादा क्रेडिट नहीं चेक कराया हुआ, तो शायद फिर हम अगर खींचेंगे तो नहीं गिरेगा, क्योंकि अगर आपने 4-5 दफ़ा पहले से भी क्रेडिट चेक करा लिया और फिर हमारे पास आ रहे हैं चेक करने के लिए, तो गिर जाता है। वो इस वजह से गिरता है कि क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम जो एक्वाफैक्स और ट्रांस यूनियन है, वो ये समझते हैं कि आप शिकार के लिए निकले हुए हैं क्रेडिट के, आप कोई बेताब हैं क्रेडिट के लिए, जब भी आप इधर उधर अपना क्रेडिट करा रहे हैं तो वो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट करता है और वो 3-3 पॉइंट्स गिराता रहता है। मजीद मालूमात के लिए आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 416-427-8655। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं ताकि आपके साथ और भी बातचीत कर सके।
इंसान अपनी जिंदगी में 2 आम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है, और मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है, और कॉल कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655।
जी साहब, यहाँ पर एक दफ़ा फिर मैं अपने सारे रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ये ताक रातें आने वाली हैं, और अपने मुसलमान भाइयों से जितने भी हैं उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा, ख़ास तौर पे इंडिया में जो इस वक्त सिचुएशन है, अपने इंडियन भाइयों के लिए दुआ ज़रूर कीजिए, उनको इस मुश्किल से अल्लाह ताला निजात दिलाए। इस वक्त इंडिया के अंदर आप यूँ समझें कि क़यामत सुग़रा आई हुई है, 3 लाख लोगों का एवरेज आ रहा है पिछले 12 से 13 दिन तक रिपोर्टिंग करने कोविड का। जितने यहाँ पे कोविड के पेशेंट रिपोर्ट होते हैं उतने वहाँ पे लोग मर रहे हैं। तो इस वक्त जो हालात इंडिया की है, हम सब अपने मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो रातें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रातें हैं, इसमें हमारे इंडिया के जितने भी भाई हैं बहनें हैं उन सब के लिए दुआ करें। हमारे नेबर है, हमारा पड़ोसी है और हमारा हक बनता है अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। और अपने इंडियन भाइयों के लिए जो भी इस वक्त तो शमशान घाटों के जो हालात हैं बहुत बुरे हालात हैं, सुना है लाइनें लग रही हैं। आइए एक इंडिया का एक नगमा है अपनी ज़मीन, उसी के ऊपर एक नगमा भी सुनते हैं और फिर दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं।
मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
ਓਨਟੇਰੀਓ ਦਾ ਕੋਵਿਡ 19 ਪਲਾਨ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਔਰ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ontario.ca/covidvaccineplan ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 300 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-888-999-6488.
Your census invitation has arrived in the mail. Your participation will help plan programs and services for your community. Your census, your community, your future. A message from the Government of Canada.
Aye. टोरंटो को वैक्सीनेट करें, अपनी बारी आने पर कोविड की वैक्सीन लगवाएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए toronto.ca/covid19 पर जाएं या कॉल कीजिए 888-999-6488।
इंसान अपनी जिंदगी में दो आम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है और मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है और कॉल कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। जी सामईन और नाजरीन, हमारे साथ रहिएगा और थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह आलम ऑन एयर भी सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। उसमें आप अगर मौलाना हजरा से सवाल करना चाहें तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। 416 स्टूडियो का नंबर है ये 416-620-1778। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा रमदान स्पेशल नेचर्स मिक्स, जान है तो जहान है। नेचर्स मिक्स एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपके कैनेडा ओंटारियो कैम्ब्रिज में बनती है ये, और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो प्योर इंग्रेडिएंट्स हैं, वो लिए जाते हैं वाटरलू किचनर के फार्मर से, और ये यहाँ पर हेल्दी प्रोडक्ट बनाई जाती है जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, प्योर इंग्रेडिएंट्स हैं। ये लोग, मैं कहता हूँ कि नेचर्स मिक्स यूज़ कर सकते थे, वेजिटेबल ऑयल, कनोला ऑयल वो यूज़ नहीं करते क्योंकि वो इतना हेल्दी नहीं है, तो वो यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल इसको बनाने में। ये बेक की जाके, बेक करके बाद बैगिंग होके, ये बिल्कुल रेडी टू ईट प्रोडक्ट है। आप अभी मिसेस सागा इकबाल फूड से इसको खरीद भी सकते हैं। उसके अलावा सोबीज, मेट्रो, लॉबलॉज, फ्रेशको, इन सब स्टोर्स में भी ये दस्तयाब है। ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ओट्स और हनी, मेपल सिरप और उसके साथ 8 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जिसमें आलमंड्स हैं, क्रैनबेरी एप्पल हैं, ये वो प्रोडक्ट इसके साथ ऐड की गई हैं जो आपके जिस्म को, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दाल मोट और ये सोया और ये जो चीज़ें होती हैं तली हुई, इनको आप साइड में कीजिए, ये प्रोडक्ट अपने साथ रखें। खास तौर पे मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया है जो ट्रांसपोर्टेशन उसमें हैं, बिजनेस में, जो लोग ट्रकिंग में हैं, ऊबर या टैक्सी चला रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आसिफ भाई हम इसको खरीद के रख लेते हैं और इसको 25-25 थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं क्योंकि ये रेडी टू ईट है, और उससे हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा और एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है। और आपके जाहिर बात है, आप बैठे भी होते हैं, खाना खा के आते हैं, तो आपके हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो कोशिश करें जाके इस प्रोडक्ट को खरीदें और आप इसके फायदे देखिएगा थोड़े ही दिनों में। मजीद मालूमात के लिए आप naturesmix.ca पे जा सकते हैं, naturesmix.ca पर। हमारे स्पॉन्सर एक और हैं, माय कैनेडियन होम रियलिटी ब्रोकरेज, फारूक करामत साहब, इनका नंबर है 4165872612। ये कहते हैं साहब, अगर आप 10 लाख का घर लिस्ट करने जा रहे हैं और 2.5% आप देंगे जो बायर एजेंट होगा और 1% आप देंगे लिस्टिंग एजेंट को, तो ये 1% 10,000 रुपये आप अपनी जेब में डाल सकते हैं। कैसे? कॉल कीजिए 4165872612। इनके पास जो घरों की लिस्टिंग है वो नाकाबले यकीन किस्म की प्राइसिंग है, लेकिन जाहिर बात है टाउन दूर है, वो GTA में नहीं है। 2.75 लाख का घर है, 1,340,000 का घर है, 2.75 लाख का जो है ये टाउन हाउस है, और 3,40,000 का जो है वो डिटैच घर लिस्ट पे लगा हुआ है विंडजर के एरिया में। आप मजीद मालूमात के लिए इनको कॉल कीजिए। ये वो घर हैं इस वक्त मार्केट में जो फ्यूचर में आपको फायदा दे के जाएंगे, लेकिन इन घरों में भी बिडिंग्स हो रही हैं, मतलब ये भी 4.5-5 पे जाके क्लोज हो रहे हैं, तब भी स्टिल वारे खाते हैं। इनको कॉल कीजिए 4165872612 और घर को जरूर आप इनको देखिए। समय यहां पर हम चलते हैं हमारा सेगमेंट ऑल इन ऑन एयर की तरफ। उससे पहले हम बात करेंगे जो इस वक्त यूरोपियन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के ऊपर एक जो जिसे हम कहते हैं ना पाबंदियां लगाने का सोचा है या बिल पास करने का सोचा, अभी लगाई नहीं है 100%, लेकिन ये बातचीत चल रही है। उसके लिए वो यही है कि आप लोग इसको जरा सा क्लिप को सुनिएगा, क्योंकि देखिए जो ब्लास्मी लॉ है जो प्रॉफिट के लिए कहा गया है, ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये दूसरे मजाहब में, और ये आया कहां से है ये हम डॉक्टर ताहिरुल कादरी की आवाज में सुनते हैं।
Or not. This is not a law made by Quran. Originally, this law of blasphemy, the death punishment for blasphemy of Lord and Prophets, this was first of all revealed in Bible. Let me give you the real history of this law. The first of all, this is the law given by Bible, Holy Bible, the Old Testament. I quote you, Leviticus, I'm quoting the Bible, Old Testament, book 24, chapter, verse 13 to 16, Holy Bible says, and the Lord spake unto Moses, saying, he that blasphemeth the name of the Lord, he shall surely be put to death. These are the words of Holy Bible. and all the congregation shall certainly stone him. And there are many other references. Then time came of Jesus Christ. Gospel appears in New Testament. He did not repeal specifically this law of blasphemy, that the blasphemers should put to death. This would be the death, would be the punishment. Only Jesus Christ also specifically did not repeal, did not abrogate this law. But he didn't speak on this subject separately. Whatever he said, the Holy Christ, Jesus Christ, he said, whoever, now I am quoting again Bible, but New Testament, Gospel. Holy Jesus Christ said, whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. It is in Matthew 12:31-32. Then it comes in Mark again. But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness. The Holy Jesus Christ, who is the fountain of forgiveness for the world, who is the fountain of love and fountain of mercy for the world, he excluded this thing. It is in Mark.
हमारे आप प्रोग्राम सुन रहे हैं सैयद आसिफ रजा का हर बुध को कारोबारी दुनिया के हवाले से, और हमारी कोशिश होती है कि आपके कानों में ज्यादा से ज्यादा मॉर्गेज और रियल एस्टेट का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, ताकि आप बड़ा फैसला करने में आपको आसानी हो. जैसे मैंने कहा है कि रमज़ान में हमारा प्रोग्राम चलता है आलिम ऑन एयर. हमारे साथ दो उलमा हजरात मौजूद हैं, और अभी जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी बात कर रहे थे उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे दो मिनट आपके हम लेंगे. हमारे साथ एक कम्युनिटी की जानी पहचानी शख्सियत मौजूद हैं, आमिर साहब. आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम.
क्या हाल है सर आपके? खैर
जी सर.
सर आप साहब ना कहकर मैं तो आपके बच्चों की तरह हूँ.
बिल्कुल
सर. मेरे चाचा के दोस्त रहे.
बिल्कुल बिल्कुल.
तो आप आमिर के हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा.
इतने बड़े थे और मैं इतना छोटा था जब आप माशाल्लाह यहाँ आते.
अब हाइट तो होती है. अच्छा, मैं बात करूँ उम्र की.
अरे लानत करे.
मेरी बात
आगे चलिए. अच्छा ये बताइए साहब कि
पहले तो एपिसोड से कि प्रोग्राम कभी कभी सुनने का मौका मिलता है आपका. ऑनेस्टली आपके सामने बड़ी तारीफ नहीं कर रहा, क्योंकि मौका नहीं मिलता बातचीत करने का. यू डूइंग अमेजिंग प्रोग्राम. और आपका जो है अंदाजे ब्याह कहते हैं, अंदाजे ब्याह, तो अंदाजे ब्याह बहुत ही प्यारा है और इतना अच्छा लगता है मुझे कभी कभार कि मैं सोचता हूँ कि कॉल कर लिया करूँ. लेकिन
अच्छा ये बताइए आप हमारे लोगों के लिए क्या माशाल्लाह अपने इस वक्त ईद पर आप क्या लेकर आ रहे हैं हमारे सामने?
पहली बात तो ईद से पहले रमजान जो चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ईद 14 या 13-14 की जो भी होनी है, उससे पहले एक प्रोग्राम कर रहे हैं छोटा सा, जैसे बाजी से कहा था मैंने. और मैं कहना चाहूंगा कि ये हिम्मत दिलवाई अरफा बाजी ने कहा, यार आमिर सवा साल हो गया है कोरोना में कुछ नहीं हो रहा, यू नो हाउ बाजी इसके फैमिलियां और पब्लिक एंड ये वो. तो फिर हमने जाहिर फिर आपको बताया कि आपके शागिर्द हमारा भी दिमाग चला गया करना
correct,
चाहिए
correct, correct.
तो उस पर हमने क्या किया कि पहले हमने सोचा कि ईद पे तो करना चाहिए विद द प्रोटोकॉल्स एंड ऑल दैट, कि जी आपका यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ द कार, नो पब्लिक मीटिंग्स एंड ऑल दैट. इफ्तार का प्रोग्राम है कल को,
ठीक,
टुमारो एट माई कोलाची,
सही,
बिटवीन 5 and 7. एंड आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर कि जो टैक्स आ रहे हैं, और ये आसिफ आपको पता है, आप भी माशाल्लाह प्रोग्राम कराते रहे हैं, आपको पता है कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट में कि 50, 100, 200 टैक्स में से 15, 20, 25, 30 मिस होंगे. ये नॉर्मल है,
नॉर्मल है,
ठीक है ना. तो आप करने के बाद आप 10 लोगों को भी करेंगे तो एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट निकलना है वो सबके सामने आ जाना है. इस वक्त तक वी हैव ऑलमोस्ट 120 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है.
वेरी गुड,
ठीक है ना. तो वो सारा मेरे पास रिकॉर्ड में है. आप ये टैक्स करते हैं, फिर मैंने अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसके अंदर मैं आपको लिंक बार बार भेज रहा हूँ. राइट, लिंक अपलोड होता है, लोग करें, आई हैव ऑल द रिकॉर्ड्स फॉर इट. तो एंड ऑफ द डे जितने सुनने वाले हैं, मैं कहना चाहूंगा आसिफ आपकी तवज्जो से कि अगर कोई रह जाता है तो इट्स अंडरस्टैंड कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा लोग कर सके. प्लस इस 2 per car है. अगर आपकी फैमिली ऑफ 5 है माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारा एक सिस्टम है बिकॉज वी क्या हमारा भी बजट है,
ठीक,
कि अगर हमने 200 देने 250 देने तो देने. अगर किसी ने, और भाई जी से बात करूंगा मैं, अगर किसी फैमिली मेंबर कहता है जी मेरे 5 हैं और मैं 2 तो ले रहा हूं, तो वी माइट अभी नहीं भाई जी से बात करके अनाउंस द प्राइस ऑफ इट. यू कैन ऑलवेज बुक फॉर 3 people यार. आई मीन क्योंकि रेस्टोरेंट्स का भी, रेस्टोरेंट भी स्पॉन्सर कर रहा है. अपना भाजी भी स्पॉन्सर कर रही है, मैं भी स्पॉन्सर कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे अभी करेंगे आगे जाके, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सब कर रहे हैं राइट। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक को अगर एक्सेस चाहिए है, अच्छा ताजा की तरफ से उसी बैग में खाने के साथ दो मैंगो जूस की बोतलें हैं,
वाह,
नूडल्स हैं,
वाह,
और ताजा के केक है,
ठीक।
तो मुझे बताइए कि इट्स वेरी यू नो डिसेंट पैकेज।
आप उसमें क्या कॉस्ट क्या है उसकी?
है उसकी कॉस्ट $10 पर बैग।
कितने?
$10 पर बैग।
$10 पर बैग। और ये दस्तयाब कहाँ से होगा?
ये माई कोलाची से दस्तयाब होगा।
विच इज एड्रेस बताइए, क्रॉसिंग बता दो।
नो नो नो, 5120 डिक्सी रोड, इंग्लिंटन और डिक्सी के कोने पर है
माई कोलाची।
माई कोलाची है, वहां पर होगा 5 और 7 के दरमियान। लेकिन आसिफ भाई यू अंडरस्टैंड दैट कि हम चाह रहे हैं सिस्टम में रहे ना, तो बगैर फॉर्म फिल किए अगेन जो फॉर्म फिल नहीं करता टैक्स करके ना पहुंचे वहां पर, इट्स नॉट गोना हैपन।
तो खाने में एक बन
नहीं,
फिर क्या
खाने में? खाने नहीं, सब ऐसा ना करें। आप मेरी साथ देखिए ना आपने।
हाँ, मैं तो देखा।
हाँ, तो पुलाव है खाने में,
अच्छा
कोरमा है,
ठीक है,
समोसा है,
ठीक है,
गुलाब जामुन है और खजूर है,
वाह,
ये खाने में है। उसके साथ दो मैंगो की बोतलें हैं,
वाह,
यानी कि दो पैकेट है एक के अंदर ही, ठीक है ना, मगर कॉस्ट एक ही है $10 खाने की। और साथ में दो जूस की बोतलें हैं, एक केक का है और एक नूडल्स है।
और आप उसमें गर्नोला मिक्स भी ऐड करें।
गर्नोला मिक्स?
गर्नोला मिक्स एक प्रोडक्ट है जो रेडी टू ईट है, वो हम आपसे फिर बात कराएंगे,
ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर लेंगे।
सामईन नाजरीन, आपने सुना आमिर शमसी साहब जो ये ईद पे प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं।
अभी इफ्तार का है, कल का ये ईद का बताएंगे।
सॉरी, ये कल इफ्तार का है,
ये कल इफ्तार का है,
कल इफ्तार।
अगले जो आपका प्रोग्राम है बुध वाले दिन
जी,
वो ईद का होगा प्रोग्राम, तकरीबन उसके अंदर हम ईद की बात करेंगे,
ईद की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर,
थैंक यू
हमारे साथ रहने का। और आपका नंबर बता दें, लोग टेक्स्ट कर सके। आप
नंबर बताएंगे सरवत, क्योंकि उनको नंबर याद कराया है मैंने। 416 देख रहे हैं आप, तैयारी चेक करे आप।
416-662-7861 बहुत आसान है, 786-7861
कॉल नहीं करना।
416-662-7861 और ये 512 डिक्सी रोड पर है।
बहुत
बहुत
शुक्रिया,
थैंक यू,
थैंक यू,
अल्लाह। सारे नाजरीन, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं सैयद आशीष का, मुझसे राबते का नंबर है 416-427-8655। हमारे साथ उलमा हजरात जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हमारे साथ सैयद मौलाना सैयद इमाम हैदर जैदी साहब जो बाबुल हवाइज इमाम बारगाह मिसिसागा के रेजिडेंट आलिम हैं, और दूसरी तरफ मिनहाजुल कुरान के हमारे साथ हैं सैयद जियाउल हक राजी साहब, मौलाना जियाउल हक राजी साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
राजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और इमाम हैदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। मौलाना साहब आइए हम चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि कल ये रमजान मुबारक का महीना है, और इसमें जो हमारे पास कुछ सवाल भी आए हुए हैं उन पर लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले लें, फिर दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं, जब तक हम आपके लिए टेक्स्ट मैसेज से सवाल निकालते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है, और मॉर्गेज के लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है, और कॉल कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। जी मैं समझता हूँ ये जो सवाल आया है ये दोनों मौलाना हजरात के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों मौलाना हजरात इस अभी चांद रात पे गुजरेंगे इस नोयत से। पहले हम चलते हैं मौलाना राजी की तरफ। मौलाना साहब ये एक्चुअली जो सवाल करने वाली है, उन्होंने कहा है कि मेरे जो खावंद हैं वो उस अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं, और मैं फ़िक्र हनफिया से, हमारे वहाँ ये है कि जब तक रोयत ना हो जाए तक तब हम ईद नहीं मनाते, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक जो चांद का सिस्टम होता है, ये जो जो पहले से ऐलान कर दिया जाता है उस पर चलते हैं। ईद पर मेरे लिए क्या फ़र्ज़ है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ईद मनाऊं? जी, और यही सिचुएशन मेरा ख्याल है कि अहले तशय्यों में भी होती है, वो हम मौलाना के पास चलेंगे, लेकिन पहले अल्लामा राजी साहब के पास। जी
रहीम, बहुत शुक्रिया आसिफ रजा साहब। सवाल जिन्होंने किया है, सबसे पहले तो ये है कि आपका जहां दिल है, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह आपने रोजा रखा है उसके मुताबिक आप करें। एक बात, मसलन अगर आपका हस्बैंड जो है उसने कैलकुलेशन पे वो गए हैं, अगर
जी कैलकुलेशन,
और वो कैलकुलेशन के मुताबिक उन्होंने रोजा रखा है, तो वो कैलकुलेशन के मुताबिक अपने रोजों को पूरा करे। और वाइफ जो है, अगर उन्होंने चांद के मुताबिक रखा है तो वो चांद के मुताबिक करे। बट दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो میاں بیوی کا ایک ایسا تعلق ہے کہ جس کو قرآن و حدیث کے اندر بھی یہ آیا ہے کہ وائف جو ہے وہ اپنی ہسبینڈ کی رضامندی سے رمضان المبارک کے جو معمولات ہیں وہ کرے. تو لہذا بہتر یہی ہے کہ اطاعت ہسبینڈ کرتے ہوئے وہ ان کی طرف جیسے انہوں نے کہا ہے اس کی مانے, نہ کہ وہ اپنی ضد پہ اڑی رہے.
ٹھیک ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے, علامہ رائی صاحب نے کہا ہے کہ گھر میں ماحول اچھا بنا رہے تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو, اور یہ بہت ضروری ہے, اور اسی کے حساب سے آپ اپنے ہسبینڈ کے حساب سے کریں. اور اگر ہسبینڈ مولڈ ہونا چاہے اور وہ روہت کے ساتھ چلنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. تو بھارت رائی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سوال کا جواب دیں. یہی سوال ہم لے کے چلتے ہیں مولانا امام حیدر زیدی صاحب کی طرف. مولانا صاحب, اہل تشیع میں بھی دیکھا گیا ہے کہ مرجع کے حساب سے وہ رکھتے ہیں, اگر ان کے جو مراجع ہیں جن کا فتویٰ آیا ہوا ہے وہ خامنائی صاحب کا جو ہے وہ نہیں, یہ جیسے زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ وہ اس سے چلتے ہیں, الیکٹرانک اس سے چلتے ہیں پہلے سے جو اعلان کر دیا جاتا ہے. اور سستانی صاحب کے جو ہیں, آیت اللہ سستانی کے, وہ روہت سے چلتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
دیکھیے, چاہے کچھ ہو, روہت ہونے کے بعد ہی حدیث میں صاف واضح ہے کہ چاند دیکھو تو افطار کرو اور چاند دیکھو تو روزہ رکھو. تو ہمارے یہاں تقلید چکے ہوتی ہے, جو آیت اللہ سستانی کے مقلد ہیں وہ آیت اللہ سستانی کے اس پہ عمل کریں گے, جو آیت اللہ خامنئی کے مقلد ہیں وہ آیت اللہ خامنئی کی تقلید کریں گے. اب ہسبینڈ اور وائف اگر دونوں الگ الگ ہیں تو یہاں پہ کوئی کسی پہ زور نہیں ڈال سکتا ہے. شریعت کے معاملے میں کسی کا پریشر اور کسی کا دباؤ قابل برداشت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو جو جس کا مقلد ہے اس پہ عمل کرے گا. جی
ٹھیک ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر مسز کو اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ میاں کی اس پہ اطاعت کرے.
نہیں, چونکہ اگر دیکھیے, اگر وہ مثال کے طور پر بیوی کی نگاہ میں افطار ہے اور شوہر کی نگاہ میں روزہ ہے, تو آپ کو پتہ عید کے دن کا روزہ حرام ہوتا ہے.
صحیح,
تو ایسا نہیں کہ شوہر اپنے نظریے کے بنا پر کسی سے حرام کام کرا لے.
ٹھیک ہے, سامعین و ناظرین, آپ پروگرام سن رہے ہیں عالم آن ایئر. ہمارے ساتھ مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب اور علامہ ضیاء الحق راضی صاحب موجود ہیں. آپ کے پاس ایک اور بھی یہاں پہ سوال آیا ہوا ہے. مجھے دوران روزہ ہم اپنی نیت نہیں کرتے ہیں, ان کا سوال یہ کہ ہم نیت نہیں کرتے ہیں, اور نیت کتنی امپورٹنٹ ہے یہ بھی بتا دیجیے گا. اور نیت نہیں کرتے ہیں کیونکہ خیال یہ ہوتا ہے کہ طبیعت صحیح نہیں ہے, اگر بیچ میں طبیعت بگڑ گئی تو ہم توڑ سکیں. اس کے بارے میں کیا فقہ حنفیہ کہتی ہے علامہ راضی صاحب؟
جی دیکھیں آصف رضا صاحب, میں وہ جیسے پہلے سوال کا بھی میں تھوڑی سی وضاحت, تھوڑا سا ایک صرف جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جی جیسے علامہ صاحب نے بیان فرمایا ہے, علامہ امام حیدر زیدی صاحب نے, وہ بالکل صحیح فرمایا ہے کہ شریعت کو جو ہے وہ توڑ نہیں سکتے. ویسے میں نے ہی یہی عرض کیا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اگر اس نے رویت کو دیکھ کر اپنا رمضان سٹارٹ کیا ہے تو وہ اس کے مطابق اپنا روزے مکمل کرے, اور جس نے کیلکولیشن کے مطابق کیا ہے وہ کیلکولیشن کے مطابق کرے. لہذا دونوں کا یہ دباؤ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو وہ بزد کریں کہ بھئی آپ نے میرے مطابق کرنا ہے اور آپ نے میرے مطابق کرنا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہے مذہب کے اندر. ہاں, صرف یہ ہے کہ تاکہ انارکی پیدا نہ ہو, گھر کا ماحول نہ خراب ہو, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز جو ہے نا وہ رکھنی.
لیکن پھر راضی صاحب اس کا تو روزہ کم ہو جائے گا نا, یا اس کا ایک روزہ بڑھ جائے گا, یا عید کے دن وہ روزہ رکھ لے کے جو حرام ہے.
نہیں, بالکل وہ نہ رکھے روزہ.
اچھا ٹھیک,
ہاں روزہ نہ رکھے, جب اس کے 30 روزے مکمل ہو گئے تو وہ روزے نہ رکھے.
اوکے ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے نا,
بالکل صحیح. اگر ان کے روزے مکمل ہو گئے تو وہ روزہ نہ رکھے, یہ صحیح ہے. چلتے ہیں ہم سوال کی طرف, جو میں نے بھی آپ سے کیا کہ ان کا سوال یہی ہے کہ انہیں نیت کتنی ضروری ہے, انہیں نیت نہیں کی ہے کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی کہ ان کو ہو سکتا ہے بیچ میں روزہ توڑنا پڑ جائے, اور اگر وہ توڑ لیتے ہیں تو کیا شرعی حکم ہے؟ راضی صاحب,
بالکل جو نیت ہے وہ سب سے پہلے اول درجہ رکھتی ہے. نیت جو ہے کہ وہ روزہ اس نے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے.
ٹھیک ہے, اور اگر انہوں نے نیت نہیں کی,
اگر نیت نہیں انہوں نے کی, تو جمہور آئمہ کے نزدیک ہر روزے کی نیت جو ہے نا الگ ضروری ہے. البتہ امام اعظم ابو حنیفہ, جو امام اعظم ابو حنیفہ جس مسلک میں ہم ہیں اور حنفی فقہ ہے, پہلے روزے کی نیت ہی کافی ہے بشرطے کہ پورے ماہ کے روزے کا تسلسل, یعنی اس نے جب رمضان المبارک شروع کیا تو اس میں اس نے یہ نیت کر لی کہ میں رمضان کے روزے رکھوں گا, تو اس میں اس نے اگر نیت کر لی ہے تو اس کے تمام روزے جو ہیں اسی نیت پر کاربند ہو جائیں گے.
کاربند ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور لیکن اور نیت کی جو ہے وہ ضرور مطلب لوگ زیادہ تر سمجھتے بھول جاتے ہیں یا نہیں کرتے, ان کے لیے کیا احکام ہے؟
نہیں نہیں, اگر دل, اصل میں نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے,
بس
کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے.
بس یہ ان کا ارادہ یہ تھا, ٹھیک ہے, بالکل
ایسا نہیں ہے کہ وہ زبان سے الفاظ دہرائے کہ میں نیت کر رہا ہوں روزہ رکھنے کی اور یہ 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 چیز نہیں ہے. اگر دل کے اندر اس کی نیت ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو دیٹس اٹ, نیت ہی دل کے ارادے کا نام ہے.
ٹھیک, یہی سوال لے کے چلتے ہیں مولانا امام حیدر صاحب کی طرف. جی مولانا صاحب,
نیت دیکھیے, الاعمال بالنیات, نیت کے بغیر تو کوئی عمل ہوتا نہیں ہے. آپ نماز بغیر نیت کے نہیں پڑھ سکتے, روزہ بغیر نیت کے نہیں رکھ سکتے.
صحیح,
یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ اس نے نیت کیا ہی نہیں, ایک کہتا ہے کہ ایک ارادہ کیا تھا اور بعد میں توڑا ہے, تو اس نے نیت کیا ہی نہیں تو اس کا روزہ ہوئی گا نہیں, روزہ ہو ہی نہیں سکتا بغیر نیت کے. تو ایک تو یہ چیز ہے, دوسرے یہ کہ اگر اس نے نیت نہیں کی ہے تو اس کا روزہ باطل ہے, اس کا روزہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر روزہ انہوں نے رکھ بھی لیا ہے اور بیچ میں توڑنا چاہتے ہیں تو روزہ اس وقت تک نہیں توڑ سکتے ہیں جب تک کہ ڈاکٹر نہ کہہ دے کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے. یہاں شریعت ڈاکٹر کی بات پر اعتبار کرتی ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ توڑ دیں, لیکن رکھنے والا جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں گا تو روزہ نہیں توڑ سکتا.
صحیح,
تو سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا نہیں, لیکن آپ روزہ نہ رکھیں یہ گناہ ہے,
روزہ نہ رکھیں گناہ. امین, یہاں پروگرام چل رہا ہے اور ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں, ہم ان کو بھی لیتے ہیں, ان کا سوال مولانا صاحب سے ہے. جی السلام علیکم.
ہیلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اچھا یہ جو آپ فرمایا نا, یہ یورپین یونین نے جو قدغن لگائی ہے نا پاکستان کے اوپر,
جی
تو آپ کو یاد ہوگا جو بیت المقدس جب فتح کرنا تھا نا,
جی
تو پہلے صلاح الدین ایوبی نے ہر بار اسے مصیبت ہوتی تھی اپنے مسلمان نوابوں سے وغیرہ سے.
سر ہمارے پاس ٹائم کم ہے کیونکہ ختم ہونے والا پروگرام.
یہ جو
سوال ہے کوئی آپ کا؟
نہیں, سوال یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے سارے مسلمان ملک جو ہے نا حکمران جتنی دیر تک وہ نہیں نا ٹھیک ہوتے اصل قصور ان کا ہے, اس کے اوپر تفرا کریں کہ ان کو کیسے کیا جائے, ان کو پش کریں, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ان کو کیسے کیا جائے.
ٹھیک ٹھیک, بہت بہت شکریہ علامہ رائی صاحب. ظاہر بات ہے جو اس وقت جو بلاسمی لا کا جو وہاں پہ بات چیت چل رہی ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر طاہر القادری کا ہم نے ایک چھوٹا سا کلپ بھی لگایا تھا, اس کے لیے ہمارے اسلامی ممالک کو ظاہر بات ہے یکجا ہونا پڑے گا, اس کے بغیر تو یہ کام ہو نہیں سکتا. لیکن پاکستان کے اوپر یورپین یونین نے کہا ہے کہ وہ پابندی لگائے گا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باقی ملکوں کو پاکستان کے لیے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے؟ جی ہلو علامہ صاحب. ہلو علامہ راضی صاحب. جی
جی جی, آواز آ رہی, آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی مجھے.
او اچھا,
فرما رہے.
جی جی, میں یہ کہتا کہ یہ جو ابھی کالر کہہ کے گئے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے اور پاکستان کے اوپر یورپین یونین نے پابندی لگانے کو کہا ہے کہ جو ابھی ناموس رسول کے لیے جو احتجاج ہوئے تھے اس کے لیے اگر پاکستان پہ پابندی لگتی ہے تو دوسرے اسلامی ممالک کا کیا فرض بنتا ہے؟
دیکھیں یہ بہت ہی اہم اور نازک مسئلہ ہے. اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر اربوں پرامن انسانوں جن کا تعلق مختلف مذاہب اور تہذیبوں سے ہے,
جی
ان کے جذبات کو یہ بری طرح مجروح کرنے کے مترادف ہے, اور کوئی بھی طبقہ اپنے پیغمبر اور مقدس شخصیات کی شان میں گستاخی کے لیے ایک حرف کو بھی برداشت نہیں کرتا. مقدس شخصیات مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ایک نیوکلیس کا درجہ رکھتی ہے, اس لیے تمام مذاہب کے پیروکاروں کا مشترکہ مسئلہ یہ ہے, نہ کہ صرف مسلمانوں کا. دنیا کا کوئی مذہب ایسے مذموم اقدامات کی اجازت نہیں دیتا, اور اسپیشلی اسلام کے اندر کوئی شخص, ایون کہ بائبل کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے ناموس رسالت کے حوالے سے,
جی
اس طرح کہ آپ نے یہ کلپ چلایا ہے,
جی
لہذا یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا ڈٹ کا مقابلہ کریں, ان سے ڈبیٹ کریں کہ صرف یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, آپ ہم پہ پابندی لگا رہے ہیں, آپ کے مسلک کے آپ کے مذہب کے اندر بھی یہ چیز ہے, اور تمام دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے اور ڈائیلاگ کے ذریعے جو ہے اس بات کو سالو کرنا چاہیے, تاکہ کوئی بھی مذہب جو ہے اس کی جو مقدس ہستی ہیں یا شخصیات ہیں, اور خاص اسلام کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے جس طرح ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یورپ کے اندر, اور پھر پاکستان کے اندر بھی اس کا لا جو ہے وہ بنایا گیا, تو لہذا تمام جتنے بھی مسالک ہیں میں ان سے یہ ادباً یہ عرض کروں گا, اور پھر جتنے بھی ممالک ہیں وہ بیٹھ کر یہ معاملے کو حل کریں تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ سالو ہو.
ٹھیک, ویری گڈ. یہی سوال لے کے چلتے ہیں مولانا امام حیدر صاحب کی طرف. جی مولانا صاحب.
جی راجیو صاحب جو کہہ رہے ہیں
بالکل ٹھیک, بالکل صحیح بات,
بالکل
بہت بہت شکریہ. آخر میں میں بہت ہی ٹائم کم رہ گیا ہے لیکن ناانصافی ہوگی کیونکہ ایسی ہستی کی بات ہے کہ جس کے لیے میں کہتا ہوں قیامت تک بھی ہم ذکر کرتے رہیں تو ان کے فضائل کم نہیں ہوں گے. میں مولانا امام حیدر صاحب سے کہوں گا, ہمارے پاس صرف 5-10 منٹ رہ گئے ہیں, اگر وہ صرف اس سوال کا تھوڑا سا بتا دیں کہ کیونکہ ظاہر بات ہے مولا امام علی علیہ السلام کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی اور شہادت ان کی مسجد میں ہوئی, اور شہادت کے وقت جب سجدے میں تھے اس ابن ملجم نے ان پہ جب وار کیا زہر آلود تلوار سے, تو لگنے کے بعد انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. مجھے پتہ ہے ٹائم کم ہے, بہت وقت چاہیے, لیکن چھوٹے سے اس میں آپ ہمارے سامعین کے لیے کیا کہنا چاہیں گے, اس کے لیے کیا مقصد تھا یہ علی کا کہنے کا؟ جی
دیکھیے مولا کائنات علی بن طالب علیہ السلام جو رسول اللہ کے بعد اسلام کی سب سے معتبر اور سب سے بڑی شخصیت ہیں, اہل بیت میں بھی ہیں اور رسول اللہ کے داماد بھی ہیں اور خاندان اہل بیت سے بھی تعلق ہے, اور آپ کے لیے نہ جانے کتنی آیتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں اتاری, رسول اللہ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے, اور صدیق اکبر سے روایت ہے کہ النظر الی وجه علی عبادہ, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. خود اہل سنت حضرات کی معتبر بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, یا علی حبک الایمان و التقوی, علی تیری محبت ایمان ہے تیری محبت تقوی ہے, و بغض و کفر و نفاق, جو تجھ سے بغض رکھتا ہے یا تو کافر ہوگا یا منافق ہوگا. ان تمام چیزوں کے باوجود جو حالات پیدا کیے گئے بنی امیہ کی طرف سے اور حاکم شام کی طرف سے, اور جس طرح سے پروپیگنڈا مولا کائنات کے خلاف اور یہاں تک پروپیگنڈا پہنچا کہ لوگ کہنے لگے علی تو نماز بھی نہیں پڑھتے نعوذ باللہ, اور علی کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ صدمہ مولا کائنات کو بہت تھا. چونکہ مولا کائنات آئے تھے ہی اللہ کا تعارف کرانے, اللہ کی توحید کو بتانے, اللہ کے احکام کو بتانے, قرآن کی حفاظت کی, رسول اللہ کی حفاظت کی, اصحاب کی بھی حفاظت کی. لہذا مولا کائنات کو یہ بڑا غم تھا کہ لوگ ہمیں اب نماز سے بھی جوڑ نہیں رہے اور کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نماز سے علی کا کوئی تعلق نہیں, اس طرح سے انسان گر چکے تھے. لہذا خداوند عالم نے ایک تو شہادت کا درجہ دیا, اور پھر مسجد میں نماز کے وقت جب تلوار آپ کے سر پہ سر مبارک پہ لگی, عبد الرحمن ابن ملجم نے جسے کہتے ہیں کہ تلوار ماری مولا کائنات کے سر پہ, اور جس سے آپ زخمی ہوئے اور 2 دن کے بعد آپ کی شہادت واقع ہوئی, تو آپ نے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئے. کعبے کے رب یعنی کعبہ جو ہے اس کی طرف لوگ جھکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, تو ایک اشارہ تھا کہ جس کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے راہ میں ہم قربان ہوئے. اور جب یہ خبر گئی ہے شام میں, خاص کر جہاں پہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا مولا کائنات کے خلاف ہوا ہے, بنی امیہ نے کیا ہے ان کے خلاف, تو وہاں پہ یہ علی نماز پڑھ رہے تھے, علی کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, علی نماز میں تھے, مسجد میں تھے اور نماز کے عالم میں شہید میں. تو پھر یہ جو داغ بنی امیہ لگا رہی تھی اور جو پروپیگنڈا کر رہی تھی قیامت تک کے لیے مٹ گیا, اور علی نے اسی کا شکریہ ادا کیا پروردگار کا کہ پروردگار میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا.
سبحان اللہ, جزاک اللہ. یہی ہم چلتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے, ذکر اتنا بڑا ہے اور حیات کم ہے. ہم چلتے ہیں علامہ راضی صاحب کی طرف. راضی صاحب, امام علی کی اگر ہم زندگی دیکھیں, یعنی دلیری اور شجاعت میں ان کا کوئی جواب نہیں. جب تک رسول اللہ رہے, رسول کے بعد صبر و شکر کیا, اور اس کے بعد جب ان کے پاس خلافت ملی تو انہیں نے عدالت کا جو نظام تھا وہ اتنا سخت رکھا ہوا تھا کہ بہت سے لوگ ان کے خلاف بھی ہو گئے تھے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. جی ہلو راہی صاحب, آپ کی آواز شاید
جی, 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 جی ابھی آواز آ رہی ہے آپ؟
جی جی بالکل آ رہی.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کے مولانا امام حیدرزادی صاحب نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے, چونکہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت 21 رمضان المبارک کا دن ہے, اور آپ نے جو سوال اٹھایا ہے, آپ کا عدل و انصاف جو تھا یہاں تک تھا کہ جب جس وہ خارجی بدبخت ابن ملجم نے جس نے آپ پہ وار کیا تھا, تو آپ نے اپنے شہزادوں کو یہ حکم فرمایا تھا کہ اس سے اتنا ہی حساب لینا جتنا اس نے میرے اوپر ضرب لگائی ہے. تو یہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی منہ بولتا عدالت کا ثبوت تھا, آپ کے عدل کا ثبوت تھا کہ آپ نے مرتے وقت یعنی شہادت کے وقت بھی یہ اپنے شہزادوں کو فرمایا کہ اس پر زیادہ ظلم نہ کرنا, اس سے اتنا ہی حساب لینا جتنا اس نے مجھ پہ کیا ہے. تو یہ آپ کی شان ہے. اور اگر میں صرف اس کو ایک شعر میں کہوں تو وہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام, لیتے ہیں غوث و کتب و قلندر علی کا نام, اور فرط ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے, میں نے لیا جو قبر کے اندر علی کا نام.
کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اعلیٰ. یہاں پہ میں ہمارا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے. میں دونوں مولانا حضرات کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ رہنے کا, اور اگلے ہفتے اب ظاہر بات ہے چاند رات ہے کہ نہیں ہے یہ فیصلہ, بہرحال ہمارا جب پروگرام ہوگا اس وقت تک نہیں ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے, تو ہم دونوں حضرات کو پھر ایک دفعہ تکلیف دیں گے. اور آپ دونوں کا بہت تہ دل سے شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہنے کا. التماس دعا. بہت بہت شکریہ علامہ رائی صاحب اور مولانا امام حیدر صاحب. سامعین, یہاں ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا جاتا ہونے کو ہے, لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر دوبارہ پروگرام میں ہم واپس آتے ہیں, پھر آپ سے بات کریں. انسان اپنی زندگی میں دو اہم فیصلے کرتا ہے, ایک گھر والی کا اور ایک گھر خریدنے کا. گھر خریدنے کے لیے آپ کو مارٹگیج چاہیے ہوتا ہے, اور مارٹگیج کے لیے آپ کانٹیکٹ کیجئے مارٹگیج پروفیشنل سید آصف رضا 416-427-8655. اگر آپ کا کریڈٹ خراب ہے, نیو امیگرینٹ ہے, یا آپ سیلف امپلائڈ ہیں, تب بھی آپ کو مارٹگیج مل سکتا ہے, اور کال کیجئے مارٹگیج پروفیشنل سید آصف رضا 416-427-8655. جی آج کی اچھی بات ہم چلتے ہیں, آج کی اچھی بات خاص طور پہ کرونا کے حوالے سے ہے یہ, اور پچھلے نے بڑی اچھی بات, یہ پبلک سروس میسج ہے, حوروں کے پاس جانے سے بہتر ہے گھروں میں جیسے تیسے اپنی بیویوں کے پاس 14 دن گزار لیں. تو مقصد یہ کہنے والے کا یہ ہے کہ حوروں کے پاس جانے سے بہتر ہے, اللہ نہ کرے کوئی جائے حوروں کے پاس جانے, حوروں کے پاس ضرور جائے, لیکن مقصد ہے کہ کرونا میں خدا نہ کرے کوئی اپنی وفات کر جائے اور وہ اوپر چلا جائے. تو انہوں نے کہا ہے حوروں کے پاس جانے سے بہتر ہے گھر میں جیسے تیسے اپنی بیویوں کے پاس 14 دن گزار لیں. پبلک سروس میسج, یہ ایک میسج تھا. بہرحال خاص طور پر کرونا میں اپنا خیال رکھیں, خاص اور پاکستان اور انڈیا میں اپنے جو بھی چاہنے والے ہیں ان کو ضرور کہیں کہ وہ ماسک, سینیٹائزر اور جتنے بھی ایس او پیز کا استعمال کر سکتے ہیں ضرور کریں. میں کہتا ہوں زیرو ٹالرنس رکھیں اس بارے میں, گھر میں کسی کو آنے جانے میں یا باہر جانے میں اس میں کسی قسم کی رعایت نہ برتی جائے. اس میں مروت جو ہمارے وہاں انڈین اور پاکستانیوں کے اندر, جب کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ آصف بھائی ہمیں کوئی وکیل چاہیے یا مارٹگیج والا چاہیے یا کوئی ایسی پروفیشنل چاہیے, تو میں کہتا ہوں دیکھیں اگر آپ انڈین اور پاکستانی کے پاس جائیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے ایفیشنسی میں تھوڑا سا فرق آئے, لیکن مروت آپ کو بہت ملے گی, آپ کا وہ ایکسٹرا مائل جا کے کام کر دیں گے. لیکن کسی مین اسٹریم کسی کینیڈین یا یہاں کے رہائشی کے پاس جائیں گے, اس کے پاس ایفیشنسی ملے گی لیکن مروت کی کمی ہوگی. تو آپ لوگ مروت بالکل نہ کیجیے گا صاحب پاکستان میں, کیونکہ اس وقت یہ آپ کے چاہنے والوں کی جان کا مسئلہ ہے, ان کی زندگی کا مسئلہ ہے. اور ماسک اور وہ ضرور پہنیں یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی اپنے چاہنے والوں کا ہے. یہاں پر ہمارے اب ظاہر بات ہے وقت ختم ہو جاتا ہے, میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, خدا حافظ, اللہ حافظ ناصر.
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا ریڈیو 770 AM. ہمارے پروگرام کو ٹورانٹو میں سننے کے لیے ڈائل کیجیے 647-872-4900, مونٹریال 514-907-6288. اس کے علاوہ کیلگری, وینکوور, ایڈمنٹن اور ریجائنا کے نمبرز آپ eawaz.com کی ویب سائٹ پر جا کے حاصل کر سکتے ہیں. हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com, लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप, रेडियो 770 AM वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
Your census invitation has arrived in the mail. Your participation will help plan programs and services for your community. Your census, your community, your future. A message from the Government of Canada.
Sodi Furniture vallon apne valuable customers vaste ek khaas